गाड़ी रोड को छोड़कर रेलिंग की तरफ गई। जैसे ही रेलिंग से टकराई, गाड़ी का पिछला हिस्सा उठ गया। फिर अचानक देखा, रेलिंग हमारे सामने है। और उस वक्त जो पहला लफ्ज मेरी जबान पर आया वो या अब्बास था, या अबुल फजल अब्बास। फिर जैसे ही मैंने या अब्बास कहा, गाड़ी पलटने लगी और पलटते पलटते किनारे की तरफ चली गई। मैंने सीट बेल्ट बांध रखी थी। जैसे ही गाड़ी पलटने लगी, मुझे एहसास हुआ कि मैं नहीं हूँ। वो चीज़ जो बदन में होती है वो नहीं है, गोया मेरी रूह मेरे बदन से निकल गई थी। एक कैमरे की तरह जो ऊपर होता है, वो जैसे स्पाइडर कैमरे को आपने देखा होगा कि स्टेडियम में ऊपर की तरफ होता है, वैसे ही मैं 4 या 5 मीटर की ऊंचाई से इस एक्सीडेंट के सीन को देख रहा था।
क्या आपने किसी ऐसे इंसान को वहां पर देखा है जिसका इंतकाल हो गया हो और गुजर चुका हो?
एक शहीद को देखा था।
अच्छा, शहीद को देखा था।
हम लोग लविजान में रहते थे। हम 20 नंबर ब्लॉक में थे। थोड़ा आगे 24 नंबर ब्लॉक था, उसी के सामने हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम हुसैन करीमी था।
हम बच्चे थे, मेरी उम्र 9 साल थी और ईमान 10 साल का था। हम पड़ोसी थे, एक दिन घर के सामने फुटबॉल खेल रहे थे। खेल में तो तू मैं होने लगी, हुज्जत तकरार होने लगी। इसी दरमियान हम लिपट गए, चूँकि वो बड़ा था और वो ताकतवर था।
मैंने हुसैन को एक हाथ मार दिया। हुसैन का एक बड़ा भाई था, अमीन करीमी। उसने जब देखा कि मैंने उसके भाई को मारा है, तो उसको गुस्सा आ गया। मुझसे कुछ पूछे बगैर कि क्या हुआ, क्यों मेरे भाई को मारा, मेरे बाएं कान पर एक तमाचा मार दिया, वो भी मेरे सारे दोस्तों के सामने। मेरा गुरूर टूट चुका था। मैं रोता हुआ घर चला गया। कुछ साल गुजर गए। 2014 में अमीन करीमी फौज में चला गया। फिर जनाब जैनब के रोज़े की हिफाजत के लिए चला गया और एक फौजी ऑपरेशन में शहीद हो गया। 9 मुहर्रम 2015 को हम लोग जुलूस में थे, साथियों के साथ बैठे हुए थे। खबर आई, करीमी शहीद हो गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि करीमी शहीद हो गया। हम सब हैरत ज़दा थे, लेकिन मुझे याद था कि उसने मुझे बचपन में मारा था।
तो अब भी आपको याद था?
जी, मैंने दोस्तों से कहा, करीमी ने एक बार मुझे बचपन में मारा था, मुझे अभी भी याद है। मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा, ताकि क़यामत के दिन इसके ज़रिए उसके थोड़े सवाब ले सकूँ, ताकि वो मेरी शफ़ात करे और मैं भी जन्नत में जा सकूँ। इसके एक महीने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं कोमा में चला गया। कोमा की हालत में मेरा जिस्म बेड पे था और मेरी रूह मेरे जिस्म के सिराने थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी तरफ आ रहा है। उसने कहा, मैं अमीन करीमी हूँ, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बचपन में मारा था और तुमने ऐसे कहा था, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने कहा, ठीक है, तो क्या हुआ? उसने कहा, मैं तुम्हारे पास माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, याद है तुमने कहा था कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैंने कहा, तुम तो शहीद हो गए थे, तुम्हें मेरी माफ़ी की क्या ज़रूरत है? उसने कहा, तुम्हारी माफ़ी की वजह से मेरा काम रुका हुआ है। ठीक है, मैं शहीद हो गया हूँ, लेकिन हक़ुन्नास माफ़ नहीं किया जाता। तो मैंने कहा, जो शहीद हो जाता है क्या वो माफ़ी मांगने आ सकता है? उसने कहा, नहीं, बल्कि मेरे लिए जनाब अब्बास, इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब ने परवरदगार से इजाज़त ली है, तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, ताकि मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। हज़रत अब्बास ने मुझसे कहा है कि अगर उसने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं उसकी शफ़ात कर दूँगा और वो ठीक हो जाएगा और वो दुनिया में पलटा दिया जाएगा और मैं अल्लाह से उसकी शफ़ात करूँगा। मैं चाहता था माफ़ी को रोक लूँ और क़यामत के लिए बचा के रखूँ और उससे कह दूँ कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, ताकि हज़रत अब्बास मुझसे मुलाकात के लिए आएँ। मैं चालाकी करना चाहता था और मैंने यूँ ही कह दिया, ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मैं चाहता था कि ये चला जाए और जनाब अब्बास मुझसे मिलने के लिए आ जाएं। एक तरह की चालाकी करना चाहता था। उसने कहा, नहीं, देखो, खुदा हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाह है और वही हाकिम भी है, और देखो कि अगर कोई हाकिम भी हो और गवाह भी हो तो बच कर नहीं निकल सकते। काफ़ी देर हो गई, जनाब अब्बास भी नहीं आए, तो मैंने कहा, मुझे धोखा दे दिया। आखिर माफ़ी भी ले ली और जनाब अब्बास भी नहीं आए। इसी हालत में मैंने मलकुल मौत को देखा। वो 3 लोग थे, पूरा काला लिबास पहने हुए थे। वो मेरी तरफ देख रहे थे। उनमें से एक ने मुझसे कहा, ए तुम, उठो, चलो हमारे साथ चलो। मैंने कहा मैं कहा तुम? कहा मैं नहीं जाऊंगा। कहा तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, हमें हुक्म है तुम्हें साथ लेकर आए। इसी दौरान मेरे खालू और मेरे मम्मी पापा मुझे देखने के लिए आए थे और आईसीयू के गेट के पास हदीसे किस्सा पढ़ रहे थे। इधर मैं इन लोगों से बहस कर रहा था, तभी मैंने देखा कि 5 शख्सियतें हरे लिबास में नमूदार हुई, जिनमें 2 बच्चे, 2 मर्द और 1 खातून थी। और जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर आया और मैंने हदीसे किस्सा को माने के साथ पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि वो तो पंजतन थे। वो आए और इन तीनों लोगों से कहा कि ईमान को छोड़ दो, अभी हुक्म हुआ है कि इसको ज़िंदा रहना है और बाबुल हवाए जाएंगे और इसकी शिफात करेंगे। बिल्कुल यही जुमला उन्होंने कहा था, प्लीज़ आप ज़रा खड़े होइए, मेरे पास आइए। एक शख्सियत मेरे पास आई और मेरे सर पे हाथ फेरा, मेरा सर झुका हुआ था।
जब वो हाथ फेर रहे थे तो आपको महसूस हो रहा था?
जी हाँ, मेरे जिस्म वाले सर पे नहीं बल्कि मेरे रूह वाले सर पे। अब आप बैठ जाएं प्लीज, उन्होंने कहा बेटा परेशान ना हो, मायूस ना होना। तो मैंने कहा मैं मायूस नहीं हूँ। नहीं मालूम कौन थे, मैंने अपना सर उठाया और ताज्जुब से कहा या अबुल फजल। बेअख्तियार मेरी ज़बान पर यही लफ्ज़ आया, मैंने कहा या अबुल फजल ये कितने हसीन हैं। उनका खत इतना लंबा था मैंने ऐसे करके देखा।
या अबुल फजल डर की वजह से था?
नहीं, उनकी खूबसूरती की वजह से। वो ज़मीनी नहीं थे कि उनका स्केच बना सकें या उनकी पेंटिंग कर सकें या उनकी कोई सूरत बना सके। उन्होंने पूछा मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा मैं वही हूँ जिसका तुमने अभी नाम लिया था, मैं अबुल फजल अब्बास हूँ। मैंने कहा ये अबुल फजल अब्बास कौन है? तो उन्होंने कहा मैं साकिया दश्ते करबला, इमाम हुसैन का भाई। मैं नाराज था, मैंने कहा बचपन से आपकी इज़्ज़तदारी करते हैं, एहसान नहीं है, आपसे मोहब्बत करते हैं। बचपन से आपकी मोहब्बत जो मेरे सीने में है उसी की वजह से। 10-12 साल की उम्र से आपका भारी अलम उठाते थे, मातम करते थे, गिरिया करते थे, सीना जनी करते थे। उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है इतना भारी अलम तुम उठा सकते थे? एक तरफ से मैं, एक तरफ से अली अकबर उसको उठाते थे और हमें तुम्हारा ख्याल रहता था, हम तुम्हारी आज़ादारी को देखते थे। अब तक मैं तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए नहीं आया था क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं थी। मैंने देखा तुमने मेरे साथी को माफ़ किया है, अब मैं अल्लाह की इजाज़त से आया हूँ। अल्लाह चाहता था कि मैं आऊँ ताकि मैं तुम्हारी शिफात करूँ और तुम अपने माँ बाप के पास वापस जा सको। उन्होंने मुझसे कहा मैं एक मरतबा दश्ते करबला में अपने मौला हुसैन के सामने शर्मिंदा हो चुका हूँ, उनके लिए और उनके बच्चों के लिए पानी नहीं ले जा सका था क्योंकि खैमे तक पहुंचने से पहले ही मुझे मार दिया गया था। तुम मेरी माँ से मेरी शिकायत ना करना। आपकी माँ से शिकायत ना करूँ यानी? उन्होंने कहा बाबुल हवाइज का लकब मेरी माँ फातिमा जहरा ने मुझे दिया था। बाबुल हवाइज यानी हाजत का दरवाज़ा, कोई इस दर से खाली नहीं जाता। तो तुम भी मुझे मेरी माँ के सामने शर्मिंदा ना करना। मैंने कहा ठीक है मौला, मैं आपसे वादा करता हूँ। कहा अपने जिस्म में जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जा सकता, आप ज़रा एक मिनट खड़े हों। मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ अपने जिस्म में नहीं जा पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा परेशान मत हो, आप ज़रा अपने हाथ को ऊपर लाएं, दोनों हाथों को ऊपर लाएं, जिस तरह बच्चे को उठाते हैं उस तरह मुझे उठाया और मुझे मेरे जिस्म पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने मेरी रूह को मेरे जिस्म पर रखा, मेरे जिस्म में खिंचाव पैदा होने लगा। नर्सों ने देखा और भागती हुई मेरे पास आई और जल्दी जल्दी मेरे सर के ऊपर जो पर्दे लगे हुए थे खिड़की के पास उनको बंद करने लगी। जब मैं होश में आया तो मेरी आवाज़ नली में फंस गई। मैं होश में आया, मैं चिल्लाने लगा नर्स डॉक्टर यहाँ आओ यहाँ आओ, वो जो यहाँ थे वो कहाँ चले गए? नर्स ने कहा कौन कौन किसकी बात कर रहे हो? मैंने कहा वही जिन्होंने अभी मुझे जिंदा किया है।
सबील मीडिया, कुरान और अहले बैत का रास्ता, कामयाबी का रास्ता।